नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के प्रबंध निदेशक विजय शेखर शर्मा ने अपनी कंपनी पेटीएम के 11 करोड़ रुपए के 1.7 लाख शेयर खरीदे हैं। कंपनी ने शेयर बाजारों को ये जानकारी दी। सूचना के मुताबिक शर्मा ने 30-31 मई को शेयर खरीदे थे। शर्मा ने 30 मई को 6.31 करोड़ रुपए के 1,05,52 शेयर और 31 मई को 4.68 करोड़ रुपए के 71,469 शेयर खरीदे। बीएसई में कंपनी का शेयर 16.10 रुपए चढ़कर 629.10 रुपए पर बंद हुआ। नियमों के अनुसार पेटीएम के आईपीओ में एक बिक्री शेयर धारक होने के नाते शर्मा को कम से कम 6 महीने तक शेयर खरीदने की अनुमति नहीं थी। उस प्रतिबंध के समाप्त होते ही उन्होंने पेटीएम के शेयर खरीदे। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। इंडियन रोड कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। गडकरी ने बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नए विचारों, शोध निष्कर्षों और प्रौद्योगिकियों के लिए इनोवेशन बैंक की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 8 साल के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 50% से अधिक बढ़कर 1.47 लाख किलोमीटर हो गई, जो 2014 में 91,000 किलोमीटर थी। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गडकरी ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 2,344 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हुआ है। गोवा, नैनीताल, ऋषिकेश, गंगटोक और माउंट आबू 2022 की गर्मियों में परिवार के साथ घूमने के लिए शीर्ष 5 पसंद बनकर उभरे हैं। यात्रा और होटल सेवाएं मुहैया कराने वाले प्रौद्योगिकी मंच ओयो के एक सर्वेक्षण में ये कहा गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश स्थल सूचकांक पारिवारिक संस्करण 2022 नाम से किए गए इस सर्वेक्षण में पाया गया कि 85% अभिभावकों ने कहा कि उन्हें काम करने और बच्चों को व्यस्त रखने में मुश्किल होती है, इसलिए उन्होंने परिवार के साथ घूमने की योजना बनाई। ओयू ने एक बयान में कहा कि अध्ययन के मुताबिक भारत में 65% से अधिक माता पिता इस गर्मी में अपने बच्चों के साथ घूमने का इरादा रखते हैं। जून के पहले 2 हफ्ते में किए गए सर्वेक्षण में 1,072 लोगों की राय ली गई। इसमें सबसे अधिक 41% लोगों ने बच्चों के साथ पारिवारिक छुट्टियों के लिए गोवा को मनपसंद जगह बताया। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 416 रुपए उछलकर 50,802 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 50,386 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी भी 1,014 रुपए चढ़कर 61,343 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 60,329 रुपए प्रति किलोग्राम था। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा, जिंस बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमतों में उछाल के साथ दिल्ली में शुक्रवार को 24 कैरेट हाजिर सोने की कीमतें 416 रुपए प्रति ग्राम चढ़ गईं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,850 डॉलर प्रति औंस और चांदी 21.90 डॉलर प्रति औंस पर लगभग स्थिर थी। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्त कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए अमेरिका से समर्थन मांगा। पाकिस्तान सरकार के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के बड़े कदम उठाने के दावों के बावजूद IMF ने समझौता करने के लिए अब तक सहमति नहीं जताई। अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस मामले की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों के हवाले से कहा, पाकिस्तान सरकार की आर्थिक टीम ने यहां अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लॉम से मुलाकात की। टीम ने इस दौरान सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के आधार पर अमेरिका से समर्थन मांगा। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल और वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर आयशा पाशा ने अमेरिका का समर्थन प्राप्त करने के लिए अमेरिकी दूत से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि मुलाकात के दौरान ब्लॉम से IMF कार्यक्रम फिर से शुरू करने में समर्थन मांगा गया, साथ ही अर्थव्यवस्था में स्थिरता के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराया गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार COVID-19 महामारी की तीसरी लहर के बाद आर्थिक वृद्धि को मिली गति को पूंजीगत व्यय के जरिए निरंतर समर्थन देने को प्रतिबद्ध है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें करों में कटौती, निजीकरण की कवायद जारी रखना, फंसे कर्ज मामलों का निपटान और उनका प्रबंधन करने के लिए संस्थानों का गठन तथा संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने का अभियान शुरू करना शामिल है। अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में नागेश्वरन ने कहा, बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय इकाइयों में निजी क्षेत्र के भागीदारों में अनिश्चितता के भाव को देखते हुए सरकार ने यह तय किया है कि पूंजीगत व्यय कुछ इस तरह से जारी रहेगा, जिससे कि महामारी की तीसरी लहर के बाद वृद्धि को जो गति मिली है वह प्रभावित नहीं हो। उन्होंने कहा, इसलिए चालू वित्त वर्ष में अगर सरकार 7.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय कर पाई तो ये सबसे बड़ा वास्तविक आर्थिक हस्तक्षेप होगा। बैंकों के बारे में CEA ने कहा कि मौजूदा वृद्धि परिदृश्य को बनाए रखने में क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।